वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बेहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। कल और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं बहुत वर्सेटाइल और जिंदगी के कई शोबों में यकसां तौर पर कामयाब और कामरान वन एंड द ओनली अतीका ओडो। वो फिल्म और ड्रामे के बेहतरीन अदाकारों में शुमार होने के साथ साथ और भी कई शोबों में नुमाया हैसियत रखती हैं। क्या आपको मालूम है कि वो फलाही सरगर्मियों में भी पेश पेश हैं? वो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की आगही मुहिम की एम्बेसडर भी हैं और कॉस्मेटिक्स की एक ब्रांड भी अपने नाम से चलाती हैं। यही नहीं बल्कि वो एक सियासी सरगर्म कारकुन के वजह से भी जानी पहचानी जाती हैं। अगर मैं उनके ड्रामों या फिल्मों की तफसील में जाऊं तो उनसे बात करने के लिए ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहेगा। वो मसरूफ हैं तो आइए उनसे फौरी बात शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतीका, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम।
जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया।
बिल्कुल, बहुत हमें अच्छा लगेगा। जैसे मुझे अच्छा लगता है उसी तरह बहुत सारे लोगों को आपसे बात करना और इस बात को सुनना अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं कि 1992 में सितारा और मेहरुन्निसा से टेलीविजन ड्रामों का आगाज आपके अश्रों पर मुहित है। 2021 में आपने परदेश ड्रामे में फनकारी के जौहर दिखाए। 29 बरस के इस सफर में अपने कल और आज तक के सफर को कैसे देखती हैं?
बहुत ही एक कामयाब तो सफर रहा है, यानी कि काम लोगों को पसंद आया है, तो उस हवाले से तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत इज्जत मिली, बहुत शोहरत मिली, नाम मिला। लेकिन बहुत ही एक मुश्किल सफर रहा है, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात होते हैं, जो ऊंच नीच चलती रहती है, या हमारे इंडस्ट्री के हालात होते हैं, उनकी वजह से जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। अभी भी पाकिस्तान का जो अदाकार है वो अपने हकों के लिए अभी भी लड़ता रहता है। कोई प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई सिस्टम या तरीका नहीं बना इस मुल्क में जहां अदाकार की एक प्रॉपर ये ख्याल रखा जाए। जैसे फिर से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हमारे सीनियर्स का, तो जब हम बात करते हैं एक्टर का, एक्टर पूरी जिंदगी अपनी दे देता है स्क्रीन को और ऑडियंस को और मुल्क को। जब वो एक बुढ़ापे की उम्र पे आता है एक्टर, तो उसके बाद जब उसके स्क्रीन प्रेजेंस डिक्रीज हो जाता है, जब उसके इतना डिमांड नहीं रहती, तो उनकी इनकम अर्निंग, उनका रेवेन्यू, सब कुछ ही एक इम्पैक्ट होता है। तो हमारे स्टेट में कोई सिस्टम नहीं है कि उन लोगों की हम उनका ख्याल रख सकें, उनकी खिदमत कर सकें, जिन्होंने इतने सालों की खिदमत दी हुई है हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। इट्स बीन इंटरेस्टिंग, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल वी हैव टू थिंक अबाउट।
तो अतीका, आप तो बहुत सारा काम करती हैं, फलाही काम भी करती हैं और कई तरह से बड़े सरगर्म हैं। क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि इस सिलसिले में कोई बाकायदा एक निजाम बनाया जा सके?
नहीं, तो मैंने जो पर्सनली जो कोशिश की है, मल्टीपल जो हमारी ट्रेड रिलेटेड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ट्रेड रिलेटेड जो एसोसिएशंस आज चल रही हैं, उनमें मैंने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला। आई वाज चेयरपर्सन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन फॉर फ्यू इयर्स, आजकल मैं एक्टर्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूँ। तो हमने क्या किया है कि हम इसका इंतजार करें, इसके बजाय कि हम इंतजार करें कि जी हुकूमत में कोई किसी को ये समझ आएगी कि जो हमारे सीनियर उम्र पे जो लोग आ जाते हैं उनको स्टेट की एक वेलफेयर का एक ख्याल की जरूरत होती है, हमने अपना ही एक सिस्टम इजाद किया एज अ ट्रेड एसोसिएशन। उसमें हमने अपने एक्टर्स जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स दिए हैं। अब लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर पे हम जा रहे हैं इंशाल्लाह इस साल। तो हमने एक फैसला किया एज अ कम्युनिटी कि इसके बजाय कि हम बाकियों से कहें कि हमारी मदद करें, हमारी जो एक ये कम्युनिटी है एम्पावर्ड है। हमारे माशाल्लाह से अदाकार जो है अब एक, क्योंकि इंडस्ट्री बन चुकी है, हमारे अदाकार अच्छा कमाते हैं, तो हम सबने कहा हम अपना अपना हिस्सा डाल के एक एसोसिएशन ऐसे चलाएंगे जहां जिन लोगों को जरूरत है या जो स्टेज अपनी जिंदगी में आ गए हैं, जो जिनको सपोर्ट की अब जरूरत है, जैसे हमारे जैसे बड़े हैं सारे ना इंडस्ट्री में, हम उनका ख्याल खुद ही रखें। तो ये हमने अब एक प्रोसेस शुरू कर दिया और शुक्र है लोगों को एक ये एहसास शुरू हो गया है कि हाँ, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओन पीपल। इसके बजाय कि हम कहें कि जी हम एक सदर साहब का एक वेलफेयर फंड पड़ा हुआ है, आर्टिस्ट के लिए हमें पता नहीं चलता कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं जाती थ्रू द एसोसिएशंस। तो वी डिसाइड कि हम खुद ही करेंगे जो हम करेंगे अपने लोगों के लिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
अच्छा, फिल्म और टेलीविजन में भी आपने अदा करेगी, कैसा कोई बुनियादी फर्क इसमें आपके सामने क्या आया? जाती तौर पर आपकी तरजीह क्या है, ड्रामा या फिल्म?
देखें, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो मुझे तो हर मीडियम में बहुत मजा आया, और ये सारे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जैसे थिएटर एक बहुत ही मुख्तलिफ मीडियम है, एनिमेटेड बहुत है, बॉडी लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होती है, आपकी आवाज की प्रोजेक्शन डिफरेंट होती है, तो थिएटर इज वेरी डिफरेंट। और एक लाइव ऑडियंस की अपनी जो एक मजा होता है वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी चीज से। इनफैक्ट बहुत से बड़े माने हुए जो अदाकार हैं वो थिएटर में आके डर जाते हैं, क्योंकि आपको इंस्टेंट एक रिएक्शन मिलता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और जहां तक टीवी का ताल्लुक है, टीवी जो है वो एक बहुत ही पर्सनल एक कनेक्शन है बिटवीन एक्टर एंड ऑडियंस, क्योंकि वो आपके ड्राइंग रूम में आता है, तो आपको टिकट खरीद के ना फिल्म देखने नहीं जानी पड़ती, आपके घर के अंदर चल रहा होता है। तो हमारे मुल्क में टीवी ड्रामा जो है वो बहुत ही कामयाब है, क्योंकि लोगों को की जो रीच है टू द पीपल बहुत बड़ी है। फिल्म का एक और ही बिल्कुल मीडियम है, फिल्म एक हाई प्रोफाइल एंटरटेनर होता है, उसके लिए आपको एक चॉइस मिलती है कि जी आप टिकट लेके जाके देखेंगे या नहीं देखेंगे, फिर आप निकलते हैं अपने घर से, सिनेमा जाते हैं, तो वहां जाके आप बैठते हैं और एक पूरा एक इवेंट होता है, जैसे आउटिंग होती है फैमिली की। तो ये सारी जो चीजें हैं, और ऑफ कोर्स रेडियो, अब रेडियो में भी वॉइस एक्टर्स या वॉइस ओवर्स, वहां पे भी तो एक परफॉर्मेंस होती है। तो हम जब एक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं रेडियो, थिएटर, टेलीविजन एंड फिल्म, तो ये चारों मीडियम जो है कवर हो जाते हैं फॉर एन एक्टर, बिकॉज इवन वॉइस इज अ परफॉर्मेंस, राइट, व्हेन यू प्रोजेक्ट योर वॉइस। तो उस हवाले से ये जो चीजें अभी जो एक हम जो इवॉल्व कर रहे हैं इनटू अ लार्जर स्केल इंडस्ट्री, जहां ज्यादा कॉन्टेंट बन रहा है, अभी डिजिटल का एक पूरी दुनिया खुल गई है हमारे लिए, तो उसमें यह कि शुक्र है, मैं समझती हूँ लोगों की जो अपनी अपनी जो फोर्टेज हैं, लोगों के जो अपने अपने स्किल बेस हैं, वो ज्यादा वो उस पर तवज्जो दे रहे हैं। बिकॉज एक आई थिंक एक पहले ही होता था, एवरीबडी यूज्ड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना, अब ये है कि अब लोगों को पता है जी अगर मैं म्यूजिशियन हूँ तो उस पर फोकस करना चाहिए, अगर मैं एक्टर हूँ तो उस पर फोकस करना चाहिए, तो लोग अपने अपने जो उनकी जो एक नीच बनी हुई उस पर ज्यादा वो एज प्रोफेशनल्स अब फोकस कर रहे हैं। और उससे एक फर्क बहुत आ रहा है परफॉर्मेंसेज में भी, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि हमारे माशाल्लाह से एक्टर्स भी बहुत इवॉल्व कर रहे हैं अब इन ऑल, तो इट्स लुकिंग गुड।
अच्छा अतिका, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि तुर्क ड्रामों को उर्दू में डब किया जा रहा है और उनकी भी बेहद पजीराई हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जानिब जो पाकिस्तान में मुतअद्दिद टेलीविजन चैनल्स के साथ साथ निजी इदारे भी ड्रामे तैयार कर रहे हैं, तो फिर भी दूसरे मुल्कों के ड्रामों की, खासतौर से ये तुर्की की है, इन ड्रामों की इतनी मांग क्यों है, इसको किस तरह से देखेंगी आप?
देखिए, एक तो हमारी एक कलेक्टिव हिस्ट्री शामिल है उसमें ऑब्वियसली ना, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट है। उसके अलावा ये कि जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं ना, जैसे देखिए हमने बड़ा अरसा कोशिश की कि जी हमारे और हिंदुस्तान के बीच में ना कोई जॉइंट वेंचर्स करके हम एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि जबान एक ही है, अगर आप हिंदी या उर्दू में बात करते हैं तो आपको कंटेंट समझ आती है। अब अगर तुर्की से हम करके डब या सबटाइटल करके चला सकते हैं, इवन लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे सियासत बहुत अपना एक हिस्सा वो खेल खेलती है, तो वहां की हमारे कोई आगे बात बनती नहीं है। एक बायलैटरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है एंटरटेनमेंट में, एंड ओवरऑल जब आप कहते हैं सॉफ्ट इमेजिंग किसी मुल्क का, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्चुअली जो बहुत ही परफेक्ट फिट एक पार्टनर होता वुड हैव बीन इंडिया बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स डजंट अलाउ अस टू डू एनीथिंग टुगेदर। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री, एक कलेक्टिव, एक हमारा पूरा एक इस्लामिक हिस्ट्री है, लोगों को इंटरेस्ट है, वो उससे वो सीखते भी हैं, बच्चे भी उसको गौर से देखते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, और अभी एट द मोमेंट एक ऐसे जॉइंट वेंचर अभी प्री प्रोडक्शन में है तुर्क पाक वाला, जो इंशाल्लाह जब बनेगा तो वो भी बड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्टर्स हमारे उसमें भी उनके वो एक जॉइंट वेंचर काम करेंगे, स्टोरी भी एक साथ लिखी जा रही है, तो एक नेचुरल एक रिलेशनशिप बन सकता है तुर्की के साथ एंड दूसरे मुल्कों के साथ भी जहां पे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हो, क्योंकि जैसे उनका डब होके चलता है हमारा भी डब होके वहां चल सकता है, कल्चरल वैल्यूज सिमिलर है, हिस्ट्री हमारी बहुत एक साथ इकट्ठी जुड़ी हुई है, सो होपफुली मैं समझती हूँ कि हमें और बायोलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसे डेवलप करने चाहिए ताकि हमारी जो एक ग्लोबल ऑडियंस बैठी हुई है वो दुनिया में मुख्तलिफ चीजें देख सके। देखें अभी अगर आप ये आप डिजिटल चैनल्स देखती हैं तो आप अगर आप नेटफ्लिक्स लगा लें, अमेजोन प्राइम लगा लें, तो उसमें क्या होता है कि आपको हर हर मुल्क से आपको हर जबान में जो है ना आपको कॉन्टेंट नजर आता है। एंड एक आदत सी हमारी अंदर पड़ रही है कि हमने सिर्फ उर्दू अंग्रेजी नहीं देखना, हम दूसरे मुल्कों से भी काम देखना चाह रहे हैं। जैसे कोरियन ड्रामा भी बहुत अच्छा बनता है। कोविड में एक्चुअली मैंने बहुत बैठ के कोरियन ड्रामा देखा। अच्छा। और ऑल्दो उनकी जबान डिफरेंट, शक्लें डिफरेंट, लेकिन उनकी स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत अच्छे, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है। तो आई फील कि हमें एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स और एज एंटरटेनर्स दुनिया के साथ काम करना चाहिए।
अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तानी ड्रामे मशहूर और बड़े पॉपुलर नावलों पर बनाए जाते थे, अभी भी बनते हैं, लेकिन फिर नए लिखने वाले भी शामिल होते गए और अब मुतअद्दिद समाजी मौजूआत पर ड्रामे बनाए जा रहे हैं जिनका पहले तस्करा भी नहीं किया जाता था। कहा जाता था कि ये टैबू है, इसमें हरासियत है, बच्चों और औरतों से बदसलूकी है, मुआशरे के छुपे हुए पहलुओं की अक्कासी है। ये सारे मौजूआत अब कवर होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप कितनी मुतमइन हैं और काला राज के अंदाज में कितना फर्क महसूस करती हैं?
जो हमारे 90s में जो चीजें चलती थी, हमारे पास बेसिकली पीटीवी होता था और फिर उसके बाद एनटीएम आ गया, तो इतने चैनल्स थे नहीं, इतना वॉल्यूम या बॉडी ऑफ वर्क था नहीं। अब हमारे पास एक ओवरऑल एक क्लटर है, एक रेस है कि जी हमने रेटिंग लेनी है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छी चीजें भी बन रही है और कुछ बहुत सॉर्ट ऑफ यू नो सब स्टैंडर्ड चीजें भी बन रही, क्योंकि असेंबली लाइन चल चुकी है हमारी। अब जब आपकी असेंबली, जब आपका स्केल चेंज हो जाता है ना, हर चीज फैंटास्टिक नहीं हो सकती। आपकी बहुत सारी चीजें बनती हैं जिसमें से कुछ चीजें बड़ी फैंटास्टिक निकलती हैं, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। इवन इन इंडिया व्हेन दे मेक थाउजेंड्स ऑफ मूवीज, उसमें से तीन या चार बहुत अच्छी साल में निकलती हैं। तो स्केल जब होता है तो आपके जो लोग अटैच्ड हैं इंडस्ट्री के साथ, जैसे आपके टेक्नीशियंस हैं, अदाकार हैं, आपके राइटर्स हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है आपकी, तो जैसे जैसे ये पहिया चलता है वैसे वैसे तरक्की आती है, कंटेंट भी इम्प्रूव होता है। जब रेवेन्यू आता है तो और भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने काम में। तो उस हवाले से कंपैरिजन टू देन एंड नाउ, जैसे तब और आज में कंपैरिजन जब आप करते हैं तो थोड़ा सा अनफेयर होता है, क्योंकि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्केल ही बहुत डिफरेंट है आज और माहौल डिफरेंट है। आजकल के बच्चे जो ड्रामा और टीवी देख रहे हैं वो उनकी सोच मुख्तलिफ है। ये वो जनरेशन है जो सोशल मीडिया पे पल रही है अभी, राइट? तो उनके पास तो एक पूरा ओवर एक ग्लोबल एक पूरा एक पर्सपेक्टिव आ चुका है। सो वी आर नॉट जस्ट कम्पीटिंग विद ईच अदर हियर और आवरसेल्व्स, वी आर कम्पीटिंग विद ग्लोबल मीडिया नाउ। तो बहुत फर्क आया हुआ है हमारे पूरे ओवरऑल व्यूअरशिप में भी।
ये कल की बात ही है कि खवातीन के किरदार बड़े रिवायती अंदाज में पेश किए जाते थे। मेरा ख्याल है कि मैं समझा पा रही हूं कि एक मखसूस अंदाज में खवातीन को दिखाया जाता था, लेकिन फिर खवातीन के हकूक के कुछ अलमबरदार सामने आए, बड़े फाल रुकन भी, जिन्होंने इस एक टिपिकल जो माइंड सेट या के खिलाफ बात करने की कोशिश की। क्या आप समझती हैं कि वाकईतन बड़ी तब्दीली आई है और इस सिलसिले में और क्या करने की जरूरत है? ये बिल्कुल ठीक है कि नए वक्त के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं और पुराने वक्त से वो हमेशा जिसे कहते हैं उसके साथ वो मुतसादिम भी रहते हैं, लेकिन अब जिस तरह से आगे चल रहा है आप मुतमईन हैं इस सारी सूरत हाल से और जो आगे बढ़ने की रफ्तार है उसके हिसाब से?
ये जी, मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो उर्दू ड्रामा की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ना, तो पाकिस्तान का ये एक इंडिजिनस प्रोडक्ट है और दुनिया में उर्दू ड्रामा नहीं बनता, सिर्फ पाकिस्तान में उर्दू ड्रामा बनता है, बिकॉज बाकी लोग जो बनाते हैं वो सैटायर, सिटकॉम, सोप्स, ये चीजें बनाते हैं। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट क्रिएट्स उर्दू ड्रामा, और जो उर्दू हमारा ड्रामा है ना वो हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है वैसे वैसे हमारा कंटेंट भी इवॉल्व हो रहा है। अब ये तो हम ये चीज तो हम अब सोच भी नहीं सकते ना कि आप 90s का कंटेंट चलाएंगे जब आप 2022 में बैठे हुए हैं। तो अब जो 2022 के जो मसले मसाइल है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो ड्रामा में वो ही आएगा। हाँ, बहुत ये है जो तनकीद आती कि जी सास बहू की बहुत कहानियां चलती हैं। अब ओवरऑल आपको पता है कि हम एक बड़ा ज्वाइंट फैमिली टाइप एक सोसाइटी है। सास बहू की कहानी बहुत पॉपुलर, बिकॉज सास बहू एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। वो उसका रिलेशनशिप कैसा है वो अलग बात है, कुछ कुछ का अच्छा है कुछ का नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जो फैमिली ड्रामा होता है वो फैमिली बैठ के देखती है तो उनके इंटरेस्ट ही होते हैं कि ओहो माँ क्या कह रही है, बहू क्या कह रही है, सास क्या कह रही है, तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर सोसाइटी। और जब लोग कहते हैं ना कि जी आपने अभी मेरा 2-3 साल पहले एक प्ले चला था प्यार के साथ हम टीवी पे, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। उसमें मुझे दिखाया था कि मेरा एक 10 साल उम्र में छोटा जवान मियाँ है मेरा, उमेर राणा ने वो रोल किया था, और फिर ये दिखाया था कि उमेर राणा का जो कैरेक्टर है, सरवर का जो कैरेक्टर है, उसका दिल आ जाता है बहू पे घर में, जो जवान लड़की है घर में। तो ये हमने दिखाया था जो घर के अंदर एक वो एक हरासमेंट टाइप, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। अब पेमरा ने नोटिस भेजा कि ये आप क्या दिखा रहे हैं, तो हमने कहा देखें जी हम कोई ऐसी चीज नहीं दिखा रहे जो जहां पे हम किसी की भी सेंसिबिलिटी खराब करें, फैमिली बैठ के देख सके। और ये सब्जेक्ट ये एग्जिस्ट करते हैं, जब तक आप इन चीजों को हाईलाइट नहीं करेंगे और आपके सोसाइटी में डिस्कशन या डिबेट नहीं होगी, आप इन चीजों को खत्म भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप एक ऑस्ट्रिच की तरह चलेंगे और आप कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान में तो कोई ना कोई कत्ल होता है, ना हरासमेंट होती है, ना कोई तलाक होती है, ना कुछ होता है, आप डिनायल में नहीं चल सकते, ये सब कुछ होता है इस मुल्क में। तो व्हेन यू शो इट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी एंड योर व्हाट हैपेंस इन योर पीपल, तो फिर डिबेट आती है, डिस्कशन आती है, कानून बनते हैं और इम्प्रूवमेंट होपफुली आती है उसकी वजह से ना,
और माइंडसेट भी चेंज हो सकता है अगर इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें देते हैं।
देखें अभी जो आप कंटेंट टीवी पे देख रहे हैं, अगर यही कंटेंट हम 90s में चलाते तो यानी कि हमारी सोसाइटी तो हिल जाती कि नहीं नहीं आप ये क्या चाइल्ड अब्यूज और ये डिवोर्सेस और हरासमेंट और ये हम 90s में नहीं दिखा सकते थे, बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत वॉज वेरी कंजर्वेटिव कम्पेयर टू वेयर इट इज टूडे। आज हमारे लोगों में बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, शुहूर आ गया, बिकॉज पूरी दुनिया की चीजें वो देख रहे हैं, तो वो एक शॉक एलिमेंट चला गया ना। अब वो चाहते हैं कि एक रियलिज्म हो, एक रियलिटी हो, एक ऐसी कहानी हो जहाँ पे वो डिस्कस कर सके रिलेट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने ड्रामा 90s में भी शुरू किया था ना, तो मुझे लगा कि हम इतना डरते थे कि भाई हमने ये नहीं टच करना टॉपिक, वो नहीं टॉपिक टच। मैं हमेशा कहती थी कि पता नहीं क्यों हम समझते हैं कि हमारी ऑडियंस बेवकूफ है, व्हाई डू वी टॉक डाउन टू आवर ऑडियंस। हमारी ऑडियंस तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी ऑडियंस में एक्चुअली बहुत यानी कि आई बिलीव आवर ऑडियंस इज वेरी ब्रेव, बिकॉज वो ये सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करके सुनती है और बात करती है। ये कंटेंट क्रिएटर्स को एक दिलेरी दिखानी चाहिए कि भाई हमें ऐसे काम करने हैं जहाँ पे हम सोशल चेंज ला सकते हैं। अब आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, मैंने कोई 10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे एक टेलीफिल्म बनाई, चलो फिर से जी लें।
अच्छा।
तो क्योंकि मैं उस वक्त अवेयरनेस का बहुत काम कर रही थी, तो मैंने कहा हमने कभी भी किसी ड्रामे में या फिल्म में ब्रेस्ट कैंसर के कॉज को देख हाईलाइन नहीं किया। तो मैंने एक प्रोड्यूस किया, सरमद खुसर ने उसको डायरेक्ट किया, आई प्लेड द ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर इन इट। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका था कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, तो अगर आप डॉक्टर के जल्दी जाएंगे आपकी जिंदगी बच सकती है। वो हमने इस फिल्म में दिखाया क्योंकि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। कितनी खवातीन ने मुझे लिखा इनबॉक्स मेरे फेसबुक एंड इंस्टा एंड इन चीजों पे कि जी आप तो आपकी वजह से हम डॉक्टर के गए, हमारे सर्जरीज हुए, वे आर लाइव टुडे। तो उस वक्त किसी चैनल, नो चैनल वांटेड टू प्रोड्यूस इट और बाय इट। मैंने बना के अपनी तरफ से, जैसे सदका कहते हैं ना, मैंने कहा जी आप लोग बस चलाएं। हर साल वो फिल्म, मैं हर कोशिश करती हूँ कि अलग अलग चैनल पे चले, इवन इफ अब डेटेड भी होगी फिर भी चलवाती हूँ मैं हर साल अक्टूबर में, तो लोग देखते रहे और डॉक्टर के जाएं, चेकअप करवाएं। तो इतना उसका इम्पैक्ट आया, इतने लोगों ने हमें लिख के बोला कि जी आपकी वजह से हमें एक अवेयरनेस आई, तो हमने चेकअप्स करवाए। तो जो हमारे जो कंटेंट है ना, हम सोशल वर्क इतने खूबसूरती से कर सकते हैं विद इन एंटरटेनमेंट। तो इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट सोशल चेंज इन सोसाइटी एज वेल।
हाँ, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, इसी के साथ अब बताइए, आपने बहुत सारे प्लेज में काम किया, फिल्मों में भी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपका अपना पसंदीदा किरदार अपने हवाले से कौन सा रहा, आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा था और क्यों था, ये बताइए मैं सुनने वालों को। मुश्किल है सवाल, मुझे मालूम है।
नहीं, ये सवाल बहुत लोग करते हैं मुझे, और ओवर द इयर्स लोगों ने बड़ा ये सवाल। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जब भी कोई रोल करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसका एक कुछ रोल का कुछ एक इंटरेस्ट है या समझ आती है या अच्छा लगता है, और मैं सोचती हूँ अच्छा इसके साथ में किरदार में इसको, ये औरत को मैं कैसे एक जान दूं, जिंदा करूं स्क्रीन पे, एक आई ब्रिंग अ लाइफ, यू नो आई क्रिएट अ लाइफ ऑफ अ वुमन ऑन स्क्रीन। तो मेरे तो सारे कैरेक्टर्स बड़े मुझे मजा भी आया। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे ऐसे काम में इतना मुझे मौका मिला, जो मैं बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स देख के, मैं ड्राइव इन सिनेमा में जाके कहती थी आई लव एक्टिंग एंड आई लव एक्टर्स एंड यू नो, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट से शुरू से ही इश्क था। तो मौका मिला, लोगों ने एक्सेप्ट किया, शुक्र अल्लाह का अभी तक मौका मिल रहा है, लोगों को अच्छा लगता है जो काम करती हूँ। तो उसमें यह है कि हर किरदार मेरा बड़ा स्पेशल रहा है, क्योंकि हर किरदार में मैंने मेहनत बहुत की है। मैं काम इतना ज्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन जो काम करती हूँ वो दिल से करती हूँ, क्योंकि मुझे दो तीन चीजों की बहुत एक क्लैरिटी है। एक तो ये कि मुझे स्क्रिप्ट टू स्क्रीन एक मौका मिलता है कि मैं एक औरत की कहानी सुनाती हूँ, वो जो भी हो, अच्छी बुरी, ग्रे वाइट ब्लैक, जो भी आप उसको लेबल देना चाहें, बट एक 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 पर्सनैलिटी आपके स्क्रीन पे मैं क्रिएट करके आपके साथ बांट रही हूँ, तो वो लोग देख रहे हैं उसे, एंड दैट पर्सनैलिटी विल आउटलिव मी, बिकॉज वो ड्रामा या फिल्म तो लगा रहेगा ना कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि जो चीज जो हम काम करते, अगर आप 5 मिनट अपनी जिंदगी के मुझे देती हैं कि बैठ के मैंने ये अतीका का ड्रामा देखना है, आई नेवर वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम इन योर लाइफ, बिकॉज जो वक्त है ना, वक्त बड़ा कीमती होता है। अब मैं अपने ऑडियंस के साथ, मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं ऑडियंस के साथ ईमानदारी करूं, ऐसा काम ना करूं कि मैं ऑडियंस का टाइम जाया करूं, क्योंकि वो टाइम उनका कीमती होता है। तो ये दो तीन जो चीजें होती है ना कि जी आई एम डूइंग टाइमलेस वर्क एंड आई एम डूइंग वर्क दैट विल मे बी ऑल्सो टच समबडीज लाइफ। हर कहानी मैं आपको एक थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने हमसफर किया और उसमें फरीदा का किरदार किया, मैंने सोचा कि मुझसे तो लोग बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि फरीदा एक बहुत ही जालिम सास है और मुझे तो बस लोग 24 घंटे गालियां देंगे और कहेंगे ये क्या ये औरत है। हैरानगी की ये बात है कि मैं जब कहीं बाहर जाती थी तो मेरी उम्र की जो औरतें होती थी वो आके मेरे गले लगती थी, तो मैंने कहा जी, कहते हैं मेरे बेटे ने भी मेरे साथ ये जुल्म किया, तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो सोसाइटी में बड़े मसले। मैं तो आई वाज शॉक्ड, आई थॉट फरीदा वुड बी अ वेरी वेरी अनपॉपुलर कैरेक्टर, बट एक्चुअली अ लॉट ऑफ वुमेन रिलेटेड टू हर बिकॉज उनकी एक सिमिलर सिचुएशन चल रही थी घर में। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि हर किरदार का कोई एक ऐसा इंसान बैठ के देख रहा है जिसकी जिंदगी को ये कैरेक्टर टच करता है, यू नो, एक इमोशनल कनेक्शन करता है कहीं।
बिल्कुल,
तो आई थिंक फरीदा कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ ओपन माय आईज फ्रैंकली कि नहीं, बट देयर आर पीपल हु हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स एंड हर कैरेक्टर की एक ऑडियंस है दुनिया में कहीं, यू नो। अच्छा, दूसरा मैंने कहा 2 साल कोविड जो हमारे पहला साल था लॉकडाउन का, आपको पता है दुनिया में लोगों में कितना एक अजीब एक माहौल था, लोगों के एंग्जाइटीज बढ़ गए, डिप्रेशन बढ़ गए, लोगों को आदत नहीं थी कि सोशलाइज ना करें, घर के अंदर बैठे हुए डरे हुए हैं, बीमारी है, इतनी बुरी बुरी खबरें सब जगह चलती थी। तो मैं बार बार सबको कहा, मैंने कहा आपको पता है जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सेस फ्रंट लाइनर्स है ना आपकी सेहत के लिए, एक्टर्स राइटर्स डायरेक्टर्स ये आपके फ्रंट लाइनर्स हैं फॉर योर इमोशनल वेलबींग। अगर हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स काम ना देते या ना करते रहते तो इमोशनली भी लोग क्या करते, आपके पास फिल्म ना होता देखने के लिए, टीवी ना आप ऑन कर सकते, 24 घंटे सिर्फ न्यूज पे आप कोविड देख रहे हो। तो आई बिलीव कि हमारी जो फ्रटर्निटी स्पेशली एक्टर्स, क्योंकि हम मास्क पहन नहीं सकते थे ना काम करते वक्त, विदाउट मास्क हम लोगों कैमरा के सामने खड़े होकर इंटरटेनमेंट बनानी होती थी लोगों के लिए, तो ये एक्टर्स भी फ्रंट लाइनर्स थे। उन्होंने कहा हम भी काम नहीं छोड़ेंगे, हमारी ऑडियंस बेचारी कहाँ जाएगी अगर वो घर लॉकडाउन में बैठ के अगर उसको इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी।
बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि मुझे भी
रियली फ्रंट लाइनर,
बिल्कुल मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत मसरूफ रहा सारी जिंदगी, लेकिन मुझे घर से काम करना पड़ता रहा, तो बाकी सारा वक्त यही था कि आप टेलीविजन देखें, और वो सारे ड्रामे जो मेरे से मिस हो गए थे अपनी मसरूफियत की वजह से, वो मैंने इन 2 सालों में देखे, क्योंकि बाहर जाने की कोई सूरत नहीं थी, काम करने की कोई सूरत नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि कोविड के एतबार से।
और आपको एक और बात बताऊं, थ्रू कोविड ऑल्सो एक्टर्स ने काम किया, क्योंकि एक तो उनकी लाइवलीहुड है, अगर ना करेंगे तो फिर क्या करेंगे, राइट। उन्होंने ऑब्वियसली अपने भी किचन चलाने होते हैं, उसके अलावा इंटरटेनमेंट की जरूरत भी थी। तो हमने क्या किया एज एन एसोसिएशन, हमने एसओपीज के एक पूरा नोटिफिकेशन भेजा टू इंडस्ट्री, टू ट्रेड, कि जी एक्टर्स के नॉट मास्क बिकॉज दे ऑन कैमरा, सारे जितने भी लोग सेट पे होते थे, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, सबको मास्क पहना के एक्टर्स ने अपना काम निकाला, ताकि उनका भी घर चलता रहे और ऑडियंस को भी एंटरटेनमेंट देते रहे। बिकॉज सो इट्स दैट वन तबका ऑफ सोसाइटी दैट कांट वेयर अ मास्क। हम कुछ भी हो जाए, हमें अनमास्क काम करना होता है, बिकॉज कोई भी कॉन्टेंट में मास्क तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि जी आप मास्क पहन के एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे। तो एक्टर स्पेसिफिकली की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, देखिए राइटर भी घर से काम कर सकता है, डायरेक्टर भी मास्क पहन सकता है, actors could not mask and they still served their people, so there was a huge contribution the actors did through entertainment for people's mental well-being. Main mental health ki baat karti hu na, to mental health mein aapko entertainment bahut help karta hai,
بالکل صحیح کہتی ہیں، یہ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات آپ کی جو اسپرٹس بڑی لو ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر آپ ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں، اس میں سے اسے خاص مخصوص صورتحال سے نکالنے کے لیے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کا دھیان بڑھ جائے تو بڑی زبردست بات ہو جاتی ہے. اچھا چلیے آخری سوال کرتے ہیں،
اگر موسیقی نہ ہوتی، اگر میوزک نہ ہوتا، ڈراما نہ ہوتا، فلم نہ ہوتی، تو پھر لوگ کیسے، مینٹل ہیلتھ پرابلمز اور بڑھ جاتی ہیں سوسائٹیز میں اراؤنڈ دا ورلڈ، ناٹ پاکستان اونلی، دنیا میں لوگوں نے گھر بیٹھ کے یہی چیزیں کی ہیں نا، اپنے انٹرٹینمنٹ دیکھ کے اپنے آپ کو صحت مند رکھا ہے ان سب.
میوزک بھی اس میں شامل ہے، بالکل آپ نے میوزک کی بھی بات کی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ڈراموں میں میوزک بھی شمار ہوتا ہے، ساری چیزیں مل کے ایک ڈراما بناتی ہیں، ایک مخصوص ماحول بن جاتا ہے. اور ہم میں سے بالکل آپ نے صحیح کہا بات کرتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ آپ کے مختلف ڈراموں، آپ کے مختلف کرداروں سے ریلیٹ کرتے ہیں، موضوعات سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم، جب ہی تو ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی بے شمار پذیرائی ہے. 100 سے زیادہ چینل ہیں پاکستان میں جو آپ ڈراما بھی بنا رہے ہیں اور پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ سیاسی منظر نامے پر بھی آپ کی موجودگی رہی، اس کا پس منظر کچھ تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو، اور کیا ابھی تک آپ ایکٹیو ہیں اس صورتحال میں سیاسی طور پر بھی؟
نہیں دیکھیں جی، میرا یہ تھا کہ مشرف صاحب کے دور پہ میں نے کچھ اپنا ایک حصہ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے اور لوگوں کو، صحیح لوگوں کو لانا چاہیے. تو اس زمانے میں میں نے بڑی کوشش کی، بیکاز اتنا ہمارے ملک میں ترقی آئی تھی ان کے دور میں، اور اتنے ہمارے ایک لیڈرشپ ویژن سب کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی میں نے بھی یہ سیاست میں اپنا حصہ ڈالنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے بعد یہ جو سیاست میں جو لڑائی جھگڑا چیخنا چلانا یہ سب چلتا رہتا ہے، اور ان کے اپنے اپنے مسئلے چلتے رہتے ہیں. عوام کو ابھی بھی اگر آپ حال دیکھیں پاکستان کا، تو میں تو یہ بار بار بیٹھ کے یہ سوچتی ہوں اور پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ جی ہوز رننگ گورنمنٹ، بیکاز یہ تو آپس میں ہی ان کے مسئلے نہیں ختم ہوتے، تو بھائی ملک کون چلا رہا ہے؟ تو جب آپ کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ سرو نہیں کر سکتے پبلک کو، بیکاز یہ پبلک سروس ہے، اور آپ نے صرف اسی ایک دلدل میں پھنس جانا ہے، اٹس لائک کوئک سینڈ نا، تو دیر از نو پوائنٹ، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری اپنی جو کمیونٹی ہے، میں اگر ادھر کام کروں، ادھر فوکس کروں، اور اگر اس کمیونٹی کے لیے کچھ بہتری لا سکتی ہوں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. کیونکہ ہمارے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں، وہ بالکل وہ کسی فوجی سے کم نہیں ہے، کسی لیڈر سے کم نہیں ہے، کسی فرنٹ لائنر سے کم نہیں ہے. تو اس کے بجائے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکے، ہم ایک دوسرے کا اگر سسٹم بنا دیں اور سافٹ امیج کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ اور ہر چیز بیس ہو جاتی ہے آپ کے ملک کی، تو یہ سافٹ امیج امبیسڈرز کی اگر میں ہیلپ کر دوں، تو آئی اسٹارٹڈ ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی ٹریڈ ایسوسیشنز، وچ واز مور پروڈکٹیو، آئی گاٹ مور ڈن. ابھی میں ایکٹرز ایسوسیشن کی چیئرپرسن ہوں. یہاں پہ ہم اتنا ایکٹرز کے لیے اتنا کر رہے ہیں کہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے دیکھ کے، ایک تو کمیونٹی ایک ساتھ کیسے جڑ کے مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک سسٹم بنانا شروع کر دیا. کیونکہ اب تک یہ ہوتا تھا ایکٹر یتیم تھا، اگر آپ کام پہ نہیں جاتے آپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا، بٹ ایسوسیشن از ناؤ ہیئر ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف دی ایکٹر اینڈ آلسو ٹو ہیلپ دی ایکٹر اف دی ایکٹر از آؤٹ آف ورک، ڈسٹریسڈ، ان ٹربل، انویل. تو ہم نے کچھ اپنے ایس او پیز، اپنے انٹرنل ایس او پیز بنا لیے، جہاں پہ میں اپنے ممبرس کو بار بار کہتی ہوں، یو آر ناٹ الون، یو آر ناٹ یتیم اینی مور، وی آر ہیئر ٹوگیدر. تو جو بھی ہم آپس میں نپٹائیں گے، پہلے تو ہوتا تھا کہ جی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایک پرچہ وزیر اعظم یا صدر کو جاتا تھا کہ جی ایک ایکٹر بڑے ڈسٹریس میں ہیلپ کر دیں. ایسے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، ہم سب امپاورڈ ایک کمیونٹی، ہمیں اپنا ایک سسٹم بنا لینا چاہیے. اینڈ شکر ہے اللہ کا کہ ایکٹرز کو سمجھ میں آ گئی، اور یہ ہم 2 سال سے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے، اینڈ وی آر ڈوئنگ ریئلی ویل، وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، تھینک گاڈ.
اچھا چلیے، اسی کے ساتھ یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ 2022 وہ سال ہے جب پاکستان کے قیام کے 75 سال پورے ہو رہے ہیں. آگے بڑھنے کے اس سفر کی سمت آپ نے بات کی بار بار، اس میں ظاہر ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا جو ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو پایا، آپ کے خیال میں کیا چیز مسنگ رہی؟
دیکھیں ویسے تو یہ بہت بڑی ایک لمبی لسٹ بنتی ہے، لیکن ہر ملک کی اپنی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. اب یو ایس میں اپنے اپنے چیلنجز ہیں، باقی ملکوں میں اپنے اپنے چیلنج، پاکستان کے بھی ویسے ہی حال ہے اپنے اپنے، تھوڑے سے انیوژل کبھی کبھار ہمارے وہ چیلنجز ہو جاتے ہیں، لیکن امیزنگ بات یہ کہ ہم ایک بہت ہی ریزیلینٹ قوم ہے. کچھ جو بھی ہوتا ہے نا ہم لگے رہتے ہیں اور ہمارا کام چلتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں ملک بھی چلتا رہتا ہے، اور لوگ بھی اپنا کر لیتے ہیں، کچھ سب کچھ مینج ہی کر لیتے ہیں. تو وی آر اے ویری اسٹرانگ ریزیلینٹ نیشن، تھینک گاڈ. اور یہ سیاست دانوں نے آ کے जो जो किया है हमारे साथ, फिर भी हम लोग जो है ना, हमारा एक नेशनल जज्बा, एक पेट्रियटिज्म, एक यू नो वांटिंग टू सर्व आवर कम्युनिटीज, ये कम नहीं होता, बिकॉज वी आर हम वैसे तो बड़े ही, यानी कि आई फील इमोशनली ताकतवर लोग हैं. अब गरीब भी, आप किसी गरीब के घर चले जाएं इस घर में, इस मुल्क में, वो उसके पास दो रोटी होगी, दोनों रोटी आपको देगा. दिल हमारा बहुत बड़ा है, लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी अनबिलीवेबल है. तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. सिर्फ ये है कि हमें ना चीजों को करेक्ट करते रहना चाहिए. एम्ब्रियोनिक है, 70-75 ईयर्स इज नॉट. आप दूसरे मुल्कों को देख लें, आप यूएस को देखें, स्लेवरी कब खत्म हुई, ये ब्लैक लाइव्स मैटर अभी भी चल रहा है उधर. आप देखें कि अफ्रीकन अमेरिकन आपके जो सिटीजन वहां यूएस के, उनको कब हकूक मिले के बस पे साथ बैठ सकते हैं. इट्स नॉट दैट लॉन्ग अगो, वी आर टॉकिंग अबाउट द 60s. तो मेरा मतलब है, लेट्स कंपेयर आवरसेल्व्स टू, लेट्स सी दीज बिगर नेशंस एंड सी वी आर नॉट डूइंग टू बैडली. बस ये है कि हाँ, काश बेहतर लीडरशिप होती, काश गवर्नेंस अच्छी होती, काश सिस्टम्स बनते. और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि जब एक इलेक्शन हुआ है और एक हकूमत को ला के रखा है, लोगों ने इलेक्ट करके डाला है जगह में, बिफोर 5 years उसको, आप उसको 5 साल से पहले अगर तोड़े, दैट शुड बी अ क्राइम, इट शुड बी इलीगल. नोबडी शुड हैव द राइट टू ब्रेक द गवर्नमेंट बिफोर 5 years. पूरी दुनिया में हर 5 साल जब इलेक्शन, 4 साल या 5 साल जब इलेक्शन होता है, तो द पीपल स्पीक. बीच में ये जो है ना कि जी असेंबलीज जुड़ रही हैं, टूट रही हैं, ये फिर आप लोगों के वोट के साथ खेल रहे हैं. मैंने अगर कहीं किसी को 2 साल 3 साल 4 साल पहले वोट दिया था किसी को, तो भी नोबडी शुड हैव द राइट टू कम एंड ब्रेक दैट गवर्नमेंट, बिकॉज पीपल हैव ब्रॉट देम इन. ओनली द पीपल शुड एक्चुअली वोट देम आउट, आई फील. तो ये चीज अगर चेंज हो जाए ना, तो ये जो सियासी जो ये चलाकियां और लड़ाइयां और ये जो मसले चलते रहते, ये सब खत्म हो जाएगा.
बहुत शुक्रिया अतीका, आपके साथ बात करके मुझे इतना अच्छा लगा है. मैं ये वैसे ही नहीं कह रही, सैकड़ों इंटरव्यूज किए होंगे, मेरे भी कोई 4 अशरे हो गए इसमें काम करते हुए, रेडियो टीवी को देखते हुए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप कि आपको भी अपना ये इंटरव्यू तो पसंद आया होगा.
नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल जी. एंड आई एम सो प्राउड कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, और हमारा भी एक जो हमारी एक आवाज है वो भी बाहर दुनिया तक जाती है. और मैं यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, ये कहना चाहूंगी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतने साल इतनी इज्जत दी, प्यार मोहब्बत, मेरा काम पसंद किया. और इंसान को कभी भी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी, यू नो, होप से ना दुनिया चलती है. कि मैं मुश्किल वक्त नहीं आता, हर शख्स की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है. आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ ये कर सकते हैं मुश्किल वक्त गुजर जाए और आप ताकतवर निकलें उस मुश्किल वक्त से. तो दैट्स हाउ आई लुक एट लाइफ, आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग प्रोडक्टिव पर्सन. मैं समझती हूँ, अच्छा अगर एक इम्तिहान लिया जा रहा है मेरा भी, तो मैंने ये इम्तिहान मैं पास कैसे करूँ, इसे पास करके मैं इससे सीखूँ. तो हर चीज एक एक्सपीरियंस होती है, आप उससे एक्सपीरियंस से सीख के आप खुद भी जो है ना, अपनी डेवलपमेंट, आपकी जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है, उसमें आप उसको नर्चर करें, चेरिश करें और आगे बढ़े अपनी जिंदगी.
बहुत बहुत शुक्रिया अतीका, आपसे मेरी बात फिर भी होगी यकीनन, क्योंकि हमने ये जो चीज रखी है काल और आज के नाम से, इसमें तो बहुत दफा बहुत कुछ करने की गुंजाइश होगी. तो मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया.
नहीं नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबके लिए बहुत बहुत सलाम, और अपना सब ख्याल रखें, और खुदा हाफिज.
खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी. पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला, इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा.